अध्याय सात राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति या स्वरूप राजनीति शास्त्र की एक मौलिक समस्या है। इसकी खोज में आरंभ से ही विद्वान संलग्न रहे हैं। इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हुए हैं तथा अनेक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है, फिर भी इस प्रश्न का समाधान ना हो पाया है। आज भी इस समस्या पर मत विभिन्नता है, अतः हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे और राज्य का वास्तविक स्वरूप निश्चित करेंगे। राज्य की प्रकृति से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। पहला, शक्ति सिद्धांत। कुछ विचारकों के अनुसार राज्य का एकमात्र आधार शक्ति है। शक्ति ही वह आधार क्षितिज है जिस पर राज्य टिका हुआ है। वे राज्य को सत्ता संस्था या शक्ति व्यवस्था के रूप में मानते हैं। सर्वप्रथम मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व स्वरूप का जो जोर दिया था उसके राज्य का आधार बतलाया गया। बाद में चलकर हॉब्स, कामटे और बेंथम ने भी बतलाया कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति ही है और शक्ति पर ही राज्य का अस्तित्व कायम है। आधुनिक युग में अनेक लेखकों ने राज्य का आकार रूप में शक्ति के महत्व पर बल दिया है। कामटे के शब्दों में प्रत्येक मानव समाज का आधार बल होता है। इतिहास से प्रमाण देकर उसने इस कथन को प्रमाणित किया है। प्रोफेसर टी एन कॉर्वर के मतानुसार राज्य शक्ति है और इस शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों को जीत लेने से उत्पन्न हुआ। यह इसी शक्ति का परिणाम है और इसी पर संगठित किया जाता है। इसके नियमों और नीतियों का निर्धारण, नियंत्रण और पालन केवल शक्ति या सत्ता के बल पर होता है। जनरल फॉर वर्न हॉर्डी ने लिखा है कि राज्यों के युद्ध के द्वारा ही न्याय और अन्याय अथवा उचित और अनुचित का निर्णय होता है। जर्मन विचारक टिट्सके ने इस विचार का समर्थन किया। युद्ध मानव मात्र का सर्वोत्तम व्यवसाय है और शांति जीवन के लिए घातक। हीगेल ने भी युद्ध को राज्य के जीवन का आवश्यक तत्व और इतिहास को निर्णायक बतलाया है। नीत्से का विचार है कि सर्वोत्तम पुरुष की स्थापना शक्ति सिद्धांत के आधार पर हुई है। स्पेंसर का कथन है कि पार्श्विक शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य की स्थापना की गई है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व नाजियों और फासिस्टों ने भी शक्ति की ही पूजा की और राज्य को शक्ति का प्रतीक बतलाया। वे केवल बल के आधार पर अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। इस सिद्धांत में सत्य का कुछ अंश है। इतिहास साक्षी है कि शक्ति के आधार पर राज्य स्थापित हुए और उनका विस्तार भी हुआ। विजेता वर्ग ने सदा विजित वर्ग के समूह पर अपनी इच्छा को लादा। आज भी प्रत्येक देश को बाहरी आक्रमण से बचाव तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तथा सेना की व्यवस्था करनी पड़ती है। शक्ति सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतिवादी टी एच ग्रीन ने भी समाज में बल प्रयोग के अनेक प्रमाण पाते हैं जिसके आधार पर आधुनिक राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। अतः बिना हिचक के हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि राज्य निर्माण में शक्ति का हाथ रहा। लेकिन यह कहना गलत होगा कि राज्य शक्ति पर ही टिका हुआ है, बल्कि आधार पर कोई राज्य अधिक समय तक कायम नहीं रह सकता। प्रजावर्ग के लिए बहुत बड़े भाग पर श्रद्धा पर ही राज्य कायम रह सकता है। महात्मा गांधी को पूर्ण विश्वास था कि प्रेम और हृदय परिवर्तन ही राज्य का आधार है। सच पूछा जाए तो शक्ति राज्य का चिन्ह है और वह उसका स्वरूप तथा आधार नहीं। हॉलवेल के शब्दों में इस सिद्धांत में शक्ति का प्रयोग को स्वीकार किया गया है, परंतु इस बात पर विचार नहीं किया गया कि शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है। लॉस्की का विचार है कि शक्ति सिद्धांत नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरा, व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। उनके मत में अन्य समुदायों की भांति राज्य व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। राज्य की प्रकृति की यह धारणा बहुत प्राचीन है। प्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारक राज्य को स्वाभाविक संस्था नहीं मानते थे, बल्कि राज्य को एक आवश्यक बुराई बदलाते थे। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी सिद्धांत का पर्याप्त प्रचार हुआ। बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम मुख्यतः लिए जाते हैं। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। तात्पर्य यह है कि राज्य एक बुराई है, फिर भी हम यह आवश्यक है। बुराई इसलिए है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है। राज्य का प्रत्येक कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण और अतिक्रमण करता है। लेकिन राज्य आवश्यक इसलिए हो जाता है कि यदि राज्य ना हो तो अपने स्वार्थ साधन के लिए लोग आपस में झगड़ने कटने लगेंगे और सामाजिक असुरक्षा तथा अशांति फैल जाएगी। अतः मनुष्य की मौलिक कमजोरी के कारण राज्य अनिवार्य है। व्यक्तिवादियों के समान अराजकतावादी विचारक भी राज्य को एक बुराई मूलक संस्था मानते हैं। उनका विश्वास है कि एक समय मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन होगा कि सद्गुणों का ऐसा विकास होगा कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इस सिद्धांत में सत्य का अंश बहुत कम है। यह राज्य को केवल बुराई के रूप में देखता है, उसकी अच्छाई की ओर ध्यान नहीं देता। वह मानव प्रवृत्तियों और तर्क बुद्धियों के प्रतिकूल है। सच पूछा जाए तो राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। यह सभ्यता के लिए प्रथम आवश्यकता है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में हम राज्य को एक बुराई या आवश्यक बुराई मानना भूल समझते हैं। हम उन आदर्शवादियों से सहमत हैं जो राज्य को निश्चित रूप में एक अच्छाई मानते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र इसलिए है कि राज्य की सहायता के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास असंभव है। तीसरा, आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च नैतिक सत्ता मानते हैं। इनके मतानुसार राज्य एक आदर्श परामर्शद्य और सर्वशक्तिमान संस्था है। व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं बल्कि दोनों अभिन्न हैं। राज्य व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ आंतरिक गुणों का प्रतीक है। राज्य की इच्छा का पालन करना अपनी श्रेष्ठतम इच्छा का पालन करना है, क्योंकि राज्य की इच्छा व्यक्ति की वह इच्छा है जो स्वार्थ रहित या परिष्कृत हो सकती है। राज्य एक नैतिक संस्था है जिसके द्वारा ही नैतिक जीवन संभव है। राज्य में रहकर ही मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। राज्य ही नैतिक जीवन की बाहरी परिस्थितियों को तैयार करता है। यह पूरे समाज को स्थिरता, एकता और अधिकाधिक आत्मचेतना प्रदान करता है। इस प्रकार राज्य शक्ति का स्वाभाविक विकास और प्रसार है। अपने सच्चे रूप में व्यक्ति और राज्य एक ही है। निष्कर्ष है, आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और आदर्श संस्था मानते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत बहुत ही पुराना है। प्राचीन यूनान, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इस सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। वे राज्य को एक नैतिक व स्वाभाविक संस्था मानते हैं, कृत्रिम नहीं। प्लेटो के अनुसार राज्य और कुछ नहीं, मानव अस्तित्व का एक विस्तृत स्वरूप है। राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं होती, वे उन मनुष्यों के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो और अरस्तु के विचार में व्यक्ति के वे कोई निजी स्वार्गिक विकास राज्य से संभव नहीं। राज्य एक सुसंगठित इकाई है जिसके सभी व्यक्ति विभिन्न अंग हैं, अतः व्यक्ति की सत्ता नहीं, राज्य से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं। राज्य एक स्वाभाविक तथा सर्वशक्तिमान संस्था है, यह मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का समिष्ट है। रूसो ने भी राज्य को नैतिक संस्था बतलाया है जिसकी सामान्य इच्छा के पालन में ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता निहित है। जर्मन दार्शनिक हीगेल इस सिद्धांत की पूर्णता पर अतिरंजित अभिव्यक्त कर पाते हैं। उनके विचार अनुसार राज्य मानव प्रकृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है तथा राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य की पुनीत कर्तव्य है। हीगेल के ही शब्दों में राज्य एक सामूहिक व्यक्ति, एक वैभव पूर्ण प्रणाली तथा पृथ्वी परमात्मा का अवतरण है। इस प्रकार उसने राज्य को बिल्कुल आदर्श तथा देवतुल्य बना दिया। उसे सर्वशक्तिमान, रहस्यमय और एक अपरुषेय सत्ता का रूप दे दिया। हीगेल के बाद ग्रीन ने आदर्शवाद को संशोधित व्याख्या प्रस्तुत की है जो बहुत अर्थों में मान्य है। वह राज्य को ना तो परमपूर्ण मानता है और ना सर्वशक्तिमान। इसका कारण यह है कि राज्य व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है, उसके आंतरिक उद्देश्यों पर नहीं, तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। फिर भी राज्य का स्वरूप आदर्श है क्योंकि वह व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास में मदद पहुंचाता है तथा स्वतंत्रता के मार्ग में रोड़े हटकाकर नागरिकों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करता है। ग्रीन आदर्शवाद का संतुलित तथा समवित रूप प्रस्तुत करता है। आदर्शवाद सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं है, इससे राज्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। फलस्वरूप राज्य निरंकुश तथा स्वतंत्रता का घातक हो जाता है। इस सिद्धांत में अनेक अनिष्टकर परिणाम हुए, लेकिन ग्रीन द्वारा प्रस्तुत इसका संतुलन रूप बहुत हद तक मान्य है। चौथा वैधानिक सिद्धांत, विधिवेता राज्य को कानूनी व्यक्ति मानते हैं। कानून की दृष्टि में राज्य एक व्यक्ति के समान है। यह एक वैधानिक संगठन है, यह एक ऐसा संघ है जो कानून के अनुसार सारे कार्यों को करता है। यह सिद्धांत भी गलत है, यह केवल राज्य के वैधानिक तत्वों पर जोर देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैधानिक स्वरूप के अतिरिक्त राज्य के अन्य स्वरूप भी हैं। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में राज्य उतना ही नैतिक या आध्यात्मिक संगठन है जितना वैधानिक। कानून राज्य के स्वरूप का एक पहलू है, राज्य केवल कानून के अनुसार ही कार्यों का संपादन नहीं करता, वह व्यक्तियों को एक उच्चतर जीवन की ओर निर्दिष्ट करता है। मिस फॉलेट ने तो कहा है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। पांचवा कल्याणकारी सिद्धांत, बहुत से विद्वान राज्य को एक कल्याणकारी व्यवस्था बतलाते हैं। इनमें ग्रोसियस और अल्थुसीसियस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वे राज्य को एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में मानते हैं जिसका संगठन सार्वजनिक हित के लिए हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन एक कंपनी से राज्य की तुलना गलत है। दोनों प्रकार के संगठनों में अनेक मौलिक भेद हैं, जैसे राज्य की सदस्यता अनिवार्य है जबकि कंपनी की सदस्यता ऐच्छिक। राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है जबकि कंपनी का संरक्षण राज्य का व्यक्तित्व उद्देश्य तथा जीवन स्थायी होता है, जबकि कंपनी का क्षणिक। छठा वर्ग राज्य का सिद्धांत। बहुत से विचारक राज्य को वर्ग व्यवस्था मानते हैं। उनके मतानुसार राज्य एक वर्ग के हाथ में दूसरे वर्गों के ऊपर शासन स्थापित करने का यंत्र मात्र है। राज्य मनुष्य का स्वभाव या आवश्यकता का फल नहीं, अपितु एक सबल वर्ग निर्बल वर्ग पर शासन करने के लिए इसका सृजन करता है। ओपेनहाइमर ने राज्य को एक वर्ग व्यवस्था के रूप में ही देखा है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक समाजवादी है। आधुनिक समाजवाद के प्रणेता मार्क्स ने बतलाया था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। सदा से दो वर्ग मिलते हैं, शोषक और शासित वर्ग, अर्थात शासक और शासित वर्ग। आज भी दो वर्ग हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। राज्य पूंजीपति वर्ग के हाथ का एक साधन है, जिसके द्वारा वे मजदूरों का शोषण करते हैं। मार्क्स के शिष्य लेनिन ने कहा कि राज्य सदा ही एक विशिष्ट वर्ग का संगठन रहा है और उसका स्वरूप सदा ही ऐसा रहेगा, जिससे किसी विशिष्ट वर्ग का हित साधन होता हो। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभाजन है और समाज की प्रत्येक व्यवस्था में राज्य एक वर्ग विशेष के हित का साधन रहा। ऐसे वर्ग का जो राज्य की शक्ति का उपयोग दूसरे वर्ग के शोषण के लिए करता है, ऐसे वर्ग सदा ही समाज का शक्तिशाली वर्ग रहा। इस प्रकार समाजवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय एवं दमनकारी संस्था है, लेकिन राज्य यह दृष्टिकोण एकांगी है। राज्य समाज के वर्ग विभाजन का परिणाम नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्ति में अनेक कारणों का हाथ है। पुनः यह दमनकारी संस्था नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य जन कल्याण। आज राज्य किसी वर्ग विशेष के हित की ओर ध्यान न देकर सामान्य जनता की भलाई की ओर अधिक ध्यान देता है। अतः इस सिद्धांत की सत्यता बहुत कम अंश में है। वर्ग राज्य एक विकृत राज्य है, वास्तविक राज्य नहीं। सातवां, बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवाद सर्वशक्तिमान तथा प्रभुता संपन्न राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। बहुलवादी राज्य को सर्वशक्ति संपन्न संस्था नहीं मानते। उनके मतानुसार परिवार, चर्च, क्लब, श्रम संघ आदि के समान राज्य भी एक संघ है। राज्य की भांति अन्य समुदाय भी व्यक्ति की सेवा प्रदान करते हैं। अतः राज्य व्यक्तियों की भक्ति का एकमात्र अधिकारी नहीं, अन्य संघ को भी व्यक्तियों की भक्ति प्राप्त है। इसलिए राज्य संपूर्ण संप्रभुता का एकमात्र अधिकारी नहीं, बल्कि संप्रभुता का विभाजन अनेक संघों के बीच होता है। मैकाइवर के शब्दों में हम केवल इस बात से इनकार नहीं करते कि राज्य कोई समाज है या समाज का कोई प्रकार। हमें निश्चित रूप में यह घोषित करना चाहिए कि राज्य कुटुंब या चर्च की श्रेणी का समुदाय मात्र ही है। इन्हीं के समान राज्य का निर्माण भी सदस्यों के एक विशेष प्रकार से संगठित समूह द्वारा, जो कि कतिपय सीमित उद्देश्यों के लिए संगठित हुआ ही होता है। राज्यों का संगठन पूर्ण समाज का संगठन नहीं। वे सब उद्देश्य जिन्हें मानव जाति प्राप्त करना चाहती है, उन उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आते जिनके लिए राज्य का अस्तित्व है। अतः राज्य संपूर्ण संप्रभुता का अधिकारी नहीं, अन्य समुदायों के यह समक्ष है। यह सिद्धांत भी भ्रमात्मक है। यह ठीक है कि राज्य भी एक समुदाय है, लेकिन अन्य समुदायों के स्वरूप और शक्ति में भिन्न है। अन्य समुदाय कृत्रिम है, जबकि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अर्नेस्ट बॉकर ने कहा है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के आपस में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की कार्य का ही राज्य कहलाता है। स्वयं लास्की जैसा बहुलवादी कहता है कि इस बात में कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि कानून रूप में प्रत्येक न कोई शक्ति होती है जो असीमित है। आठवां, समझौतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, स्वाभाविक नहीं, यह मनुष्य की इच्छा का परिणाम है। आरंभ में राज्य नहीं था, इस राज्य विहीन अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते थे। इस प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर तथा सभ्यता की बढ़ती हुई पेचीदगी के कारणों मनुष्य ने पारस्परिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्तक हॉब्स, लॉक तथा रूसो थे। यह सिद्धांत दोषपूर्ण है, यह राज्य को अप्राकृतिक तथा मानव निर्मित संस्था बतलाता है, जबकि राज्य वस्तुतः मानव स्वभाव तथा ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। नौवां, सर्वाधिकारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक सर्वव्यापी संस्था है, जिसमें पूरे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्ति राज्य के लिए ही जीता है और मरता है। आदर्शवादी विचारक हीगेल ने राज्य के इस स्वरूप को प्रस्तुत किया है। बीसवीं शताब्दी में फासिस्टों तथा नाजियों ने सर्वाधिकारवादी राज्य को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। मुसोलिनी ने कहा था कि सब कुछ राज्य के लिए और राज्य से बाहर कुछ नहीं। दसवां, राज्य के आवेविक स्वरूप का सिद्धांत। समय समय पर राजनीति विज्ञान के विचारकों ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। ये राज्य को एक जीवधारी प्राण के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर जीवित परमाणु से बना है, उसी प्रकार राज्य व्यक्ति रूपी जीवित परमाणु से बना है। इस सिद्धांत को आंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह प्राणी शास्त्र संबंधी सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आधार सावयव एकता है। सावयव एकता का अभिप्राय है कि मनुष्य का शरीर भिन्न भिन्न अवयवों का एक सुसंगठित संघ है और शरीर के सब अवयवों के संबंध हैं। इसी भांति राज्य रूपी शरीर व्यक्ति के अंग हैं, जिनका राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं। व्यक्ति और राज्यों में वही आत्मीय संबंध है जो जीवधारी और उनके अंगों पत्रंगों के बीच में है। जो संबंध आँख नाक कान फेफड़े और अमाशय का शरीर के साथ है, वही संबंध व्यक्ति का राज्य के साथ है। जिस प्रकार घटक शरीर से पृथक होकर जीवित नहीं रह सकता और ना उसकी सत्ता ही रह सकती है, उसी प्रकार राज्य समाज या राज्य से पृथक होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ना उसकी सत्ता की कल्पना की जा सकती है। जिस प्रकार शरीर से भिन्न भिन्न अंग हैं, उसी प्रकार समाज या राज्य में भिन्न भिन्न समुदाय या संस्थाएं हैं। तात्पर्य यह है कि राज्य और मनुष्य में वही संबंध है जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों में है। गॉर्नर के शब्दों में यह सिद्धांत राज्य और व्यक्तियों के बीच ठीक उसी प्रकार के अनियोजित संबंधों का व्याख्या करता है जैसा शरीर और अंगों के बीच, शरीर के साथ हाथ और पैर के साथ पक्षी का जो पारस्परिक निर्भरता का संबंध है, वही समाज के साथ मनुष्य का होता है। विकास जेलेनिक का कथन है कि राज्य से संबंध रखने वाला यह सावय सिद्धांत बहुत ही पुराना और लोकप्रिय है। प्राचीन यूनान के दार्शनिकों की प्रवृत्ति व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत स्थापित करने की थी, इसलिए राज्य की तुलना उन्होंने देहधारी से की थी। प्लेटो ने राज्य की तुलना एक विराट मनुष्य से की है और यह प्रतिपादन किया है कि सर्वोपरि सुव्यवस्थित समानतंत्र वही है जिसकी बनावट तत्वत मनुष्य शरीर की बनावट से समानता रखती है। अरस्तु भी व्यक्ति को राज्य का एक सजीव अंग मानता था। उसी काल में रोम के विचारक सिसरो ने राज्य की कार्य संचालन शक्ति की तुलना मनुष्य के मस्तिष्क की थी। मध्ययुग में इस उपमा का भरपूर उपयोग किया गया। लेखकों ने इस उपमा का प्रयोग तरह तरह से किया और कुछ ने तो राज्य और मानव शरीर की एकरूपता स्थापित करने में बाल की खाल भी खींच डाली। सर थॉमस एक्विनास, ओवर्राय, पदवा के मार्सिलियो और लुका के पालोमी ने इस उपमा का प्रयोग किया। इन सबों ने मानव शरीर के विभिन्न अंगों की उपमा राज्य के विभिन्न विभागों से की दी। आधुनिक काल में हॉब्स, रूसो, हॉर्बर्ट स्पेंसर, बलंसली आदि आवेग विचारकों ने भी राज्य के आवेगिक स्वरूप का अध्ययन किया। हॉब्स के अनुसार राज्य का विशाल दैत्य है जो एक कृत्रिम मानव है। यह आकार और शक्ति में प्राकृतिक मनुष्य से बड़ा है। उसने मनुष्य की आत्मा की तुलना राज्य की प्रभुत्व शक्ति से और शरीर के जोरों की तुलना राज्य के मजिस्ट्रेटों से और मनुष्य के ज्ञान के तंतुओं की तुलना पुरस्कार तथा दंड से की। रूसो ने भी तुलना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में एक चालक शक्ति होती है, उसी प्रकार समाज में भी एक चालक होती है। मनुष्य में जिस प्रकार इच्छा शक्ति होती है, उसी प्रकार समाज में भी एक समान इच्छा शक्ति होती है। उसने राज्य की विधायनी शक्ति की तुलना मनुष्य के हृदय से और कार्यपालिका की तुलना मनुष्य के मस्तिष्क से की है। 19वीं सदी में कुछ जर्मन विचारकों ने इस सिद्धांत का उपयोग किया। जर्मन विचारक के बलंसली ने बताया कि राज्य मानव शरीर की प्रतिमूर्ति है। उसने आगे कहा कि जिस तरह एक तैलचित्र तेल है, उसी जिस प्रकार एक मनुष्य जीवाणु मात्र के परिणाम तथा रक्त जीवाणुओं की अपेक्षा कुछ उच्च होती है, उसी प्रकार राज्य केवल नागरिकों के यौगिकों की उपेक्षा कुछ अधिक होता है और राज्य नियमों के केवल संग्रह की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। फिक्टे के शब्दों में एक अव्ययपूर्ण शरीर में प्रत्येक अव्यय पूर्ण शरीर के पोषण में योग देता है और इस योग के कारण स्वयं भी पोषित होता है। यही बात व्यक्ति और राज्य के बारे में लागू होती है। आंगिक सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। वह एक व्यक्तिवाद विचारक था। उसके अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए हम इस सिद्धांत का उपयोग किया। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में संगठित समाज और प्राणी शरीर की बड़ी सुंदर तुलना की है। उसके सिद्धांत की विशेषता यह है कि उसके राज्य और शरीर की न केवल समानताओं पर जोर दिया बल्कि उनकी समानताओं से भी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया। उसका कहना है कि प्राणी और शरीर और समाज शरीर दोनों का आरंभ पहले पहल कीटाणुओं के रूप में होती है। इन दोनों के समान रूप में निरंतर वृद्धि क्रिया होती है। ज्यों ज्यों इनके अंगों का विकास होता है, त्यों त्यों उनकी बनावट में जटिलता आती जाती है। सबसे शुद्ध प्राणी के शरीर की बनावट बिल्कुल असाधारण होती है। इस प्रकार समाज अनुन्नत अवस्था में एक साधारण समुदाय था। समय की गति के साथ समाज का विकास होता गया और उसमें जटिलता बढ़ती गई। जिन तत्वों से प्राणियों के शरीर का विकास होता है, उन्हीं तत्वों के आधार पर समाज शरीर का विकास होता है। जिस प्रकार शरीर के पुराने घटक नष्ट हो जाते हैं और उनका स्थान नए घटक ले लेते हैं, उसी प्रकार राज्य शरीर में वृद्धि, रोगी तथा अनुपयुक्त व्यक्ति मर जाते हैं और उनका स्थान नए व्यक्ति ले लेते हैं। स्पेंसर ने राज्य शरीर और प्राणी शरीर के विकास क्रम की तुलना के अतिरिक्त दोनों के संगठन में भी समानता बतलाई। इसका कहना है कि जिस प्रकार शरीर में तीन प्रणालियां, जीवन प्रणाली, मुंह, दांत, पेट, आंत आदि, दूसरा विभाजन प्रणाली, हृदय और धमनियां, तीसरा प्रबंधक प्रणाली, स्नायु मंडल होती है, उसी क्रम में राज्य शरीर की तीन प्रणालियां हैं। पहला उत्पादन प्रणाली, कृषि और उद्योग, दूसरा विभाजन प्रणाली, संवहन और यातायात, और तीसरा प्रबंधक प्रणाली, सरकार एवं सेना। स्पेंसर व्यक्तिवादी था। व्यक्तिवाद के प्रतिपादन के लिए उसने राज्य और शरीर और प्राणी शरीर में भी असमानताएं बताई। प्राणी शरीर का प्रत्येक अंग परस्पर बड़े बड़े घनिष्ठ संबंध के एक साथ दूसरे से संबंध है। इस प्रकार इसके विपरीत समाज शरीर असम्मिलित है। मानव शरीर के समस्त अंग परस्पर मिले होते हैं, परंतु राज्य के अंग पृथक पृथक होते हैं। राज्य को मस्तिष्क नहीं होता, परंतु व्यक्ति को मस्तिष्क होता है। समाज शरीर और प्राणी शरीर के उद्देश्यों में विभिन्नता है। मनुष्य शरीर में पृथक पृथक अवयवों का उद्देश्य अपना अपना कार्य करते हुए संपूर्ण शरीर की सेवा करना है। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसके विपरीत समाज शरीर के सदस्यों का अस्तित्व समाज के लिए नहीं, बल्कि समाज का अस्तित्व सदस्यों के लाभ के लिए है। स्पेंसर के व्यक्तिवाद का यह आधार था। अनेक अन्य विद्वानों ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के न्यायशास्त्रवेता अल्बर्ट सेफले, रूस के समाजशास्त्रवेता पॉल विनोन फेल्ड तथा ऑगस्टस काम्प्टे, ट्रॉड, लिटानू, डिग्रेड, फॉली, रचनवॉर्स आदि फ्रेंच दार्शनिकों तथा जर्मन समाजशास्त्रवेता ने साव्य सिद्धांत का समर्थन किया। मूल्यांकन आंगिक सिद्धांत में निम्नलिखित त्रुटियां पाई जाती हैं। पहला, प्राणी शरीर के तत्वों और समाज में शरीर के तत्व मनुष्यों की तुलना में अनुपयुक्त है। प्राणी शरीर के लाल रक्त कण केवल द्रव्य के टुकड़े हैं, जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, ना इसमें कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही है। शरीर से पृथक होकर ये जीवित नहीं रह सकते। इसके विपरीत समाज शरीर के तत्वों का निजी अस्तित्व है। इसमें इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि है, आत्मसंयम की शक्ति है। इनमें स्वतंत्र जीवन और गति है। वृद्धि, विकास, विनाश और मृत्यु के जो नियम प्राणी शरीर में कार्य करते हैं, वे राजनीतिक समाज शरीर में कार्य नहीं करते। इसलिए मैकाइवर ने कहा है कि जिस प्रकार समझौता सिद्धांत मनुष्य की सामाजिक प्रकृति के प्रति न्याय नहीं करता, उसी प्रकार आंगिक सिद्धांत मनुष्य के प्रति न्याय में विफल है। दूसरा, मनुष्य शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रिया संपूर्ण रूप से शरीर ही तक सीमित रहती है, लेकिन राज्य के सदस्यों का अस्तित्व तथा उनके कार्य केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहते। तीसरा, राज्य की इकाइयां अर्थात नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। उनकी संख्या को भी इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्राणी शरीर के अंग प्रत्यंग स्थायी रूप से निश्चित हैं। पांचवा, शरीर का विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, लेकिन राज्य के विकास के लिए निश्चित प्राकृतिक नियम नहीं है। छठवां, इस सिद्धांत के व्यवहारिक परिणाम भरे बड़े भयावह हो सकते हैं यदि व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दें अथवा उसे पूर्णतः स्वतंत्रता दे दें, तो दोनों दिशाओं के परिणाम खतरनाक ही होंगे। सातवां, यह सिद्धांत बड़ा अस्पष्ट और लचीला है। इसके आधार पर भिन्न भिन्न लेखकों ने राज्य के कार्यों के विषय में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। एक और स्पेंसर ने इसका उपयोग व्यक्तिवाद के समर्थन के लिए किया, तो दूसरी ओर हॉक्सले और पार्कर के अनुसार निरंकुश शासन तथा समाजवाद के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई परिणाम नहीं हो सकता। आठवां, एक प्राणी शरीर के जन्म के लिए दो राज्यों का सहयोग आवश्यक नहीं। नौवां, यह सिद्धांत राज्य के नैतिक तथा आदर्शात्मक स्वरूप पर पर्याप्त जोर नहीं देता। राज्य परोपकार, सहयोग की भावना, सामान्य सुरक्षा की खोज आदि नैतिक सिद्धांतों पर आश्रित है, जबकि जीव विज्ञान में इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं। इन रूटियों के बावजूद इस सिद्धांत में कतिपय उपयोगी बातें पाई जाती हैं, जिनका उल्लेख गैटल ने किया है। पहला, यह सिद्धांत राज्य के ऐतिहासिक विकास का महत्व बतलाता है। दूसरा, यह प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणामों पर जोर देता है। तीसरा, यह राज्य और नागरिकों की पारस्परिक निर्भरता दर्शाता है। चौथा, यह सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है और यह बतलाता है कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से किस तरह गुंथे हुए हैं। पांचवा, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज केवल व्यक्ति सूत्र रहित समूह नहीं, यह स्पष्ट रूप से बतलाता है कि समाज के सदस्य एक विचित्र तरीके से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और सब मिलकर समाज पर निर्भर रहते हैं और साथ ही समाज भी शक्तियों पर निर्भर रहता है। छेवां, यह सिद्धांत बतलाता है कि मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्रकृति के होते हैं और उनकी सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति राज्य की उत्पत्ति करती है। निष्कर्ष है, उपयुक्त विवेचना से यह ज्ञात होता है कि राज्य की प्रकृति के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन ये सभी सिद्धांत एकांगी तथा भ्रमपूर्ण हैं। राज्य ना तो ईश्वरीय सत्ता है और ना ही कृत्रिम यांत्रिक व्यवस्था, ना सत्ता, ना संस्था, ना वर्ग विभेद के दमन की प्रक्रिया, ना कोई सामाजिक परिणाम। गेटेल के शब्दों में यह राजनीतिक एकता की चेतना प्रेरणाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। राज्य मनुष्यों की सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार की भावनाओं और प्रवृत्तियों का एक संगठनात्मक और स्वाभाविक स्वरूप है।